विठ्ठल का नाम लेकर मिले आनंद, विठ्ठल का नाम लेकर मिले आनंद, विठ्ठल के चरणों में मन हो जाए दंग, विठ्ठल नाम स्मरण से भूलते देह बान, विठ्ठल दर्शन से होते पावन पंच प्राण, विठ्ठल का नाम लेकर मिले आनंद ही आनंद। आज के सत्संग में हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आषाढ़ी एकादशी इस शब्द का उच्चारण करते ही आंखों के सामने आ जाती है पंढरपुर की वारी। इस एकादशी के लिए लाखों वारकरी एवं श्रद्धालु भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हैं। संपूर्ण वर्ष की कुल 24 एकादशियों में इस एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो व्रत होता है उसमें सभी देवताओं का तेज समाहित होता है और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। जो देवता महाराष्ट्र के इष्ट देवता है तथा महाराष्ट्र भर में फैले प्रत्येक वारकरी के मन मंदिर में जिनकी सुंदर मूर्ति स्थापित है, ऐसे भगवान विठ्ठल की यह एकादशी है। भगवान विठ्ठल नाम के जयघोष में निकलने वाली पैदल यात्रा अर्थात वारी को नाम फेरी का स्वरूप प्राप्त होता है। पंढरपुर की वारी में सम्मिलित लोगों का तन मन धन एवं सर्वस्व भगवान के चरणों में ही अर्पण होता है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्तिवश जो यात्रा की जाती है उस पैदल यात्रा अर्थात वारी में मन की निर्मलता होती है और इसमें स्थूल देह भी चंदन समान घिसती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन श्री विठ्ठल से मिलने की व्याकुलता में भूख प्यास बुलाकर पैदल वारी करने वाले वारकरियों का हमें स्मरण होता है। परंतु क्या आप सभी को ये ज्ञात है कि पंढरपुर के प्रथम वारकरी कौन है? इसका विचार करते हुए आपको अनेक संतों के उदाहरणों का स्मरण हुआ होगा। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव आदि संतों का तो स्मरण हुआ ही होगा, परंतु इनमें से कोई भी प्रथम वारकरी नहीं है। तो भला कौन है? पंढरपुर का प्रथम वारकरी कौन है? वे हैं साक्षात भगवान पांडुरंग। जी हाँ, श्री विठ्ठल ही पंढरपुर के प्रथम वारकरी है। अपने लाडले भक्त पुंडलिक से मिलने के लिए विश्व नियंता दौड़े चले आए और वहीं ठहर गए। इस प्रकार भक्त पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए भगवान पांडुरंग पहले वारकरी हो गए और इस भेंट को महायोग कहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ही पुंडलिक से अर्थात भक्त से मिलने आ गए थे। पंढरपुर श्री क्षेत्र भगवान श्री पांडुरंग का स्थान है और इसके साथ ही इसका एक और महत्व है, वो ये कि भक्त कैसे हो, अर्थात ये वारकरी का महत्व दर्शाने वाला स्थान भी है। इसलिए पंढरपुर भगवान विठ्ठल भक्ति का अनोखा केंद्र है। वह भक्ति की महिमा का वर्णन करने वाला दिव्य स्थान है और इसीलिए संत कहते हैं, पुंडलिक से मिलने आए परब्रह्म। ये भक्त एवं भगवान के बीच का कितना सुंदर नाता है। चाहे वे संत नामदेव एवं श्री विठ्ठल के मध्य हो, संत चोका एवं श्री विठ्ठल के मध्य हो, अथवा संत तुकाराम एवं श्री विठ्ठल के मध्य हो, ये नाता ही कितना सुंदर है। ऐसे महान विठ्ठल भक्त संतों में से एक संत थी संत जनाबाई, जिनके प्रत्येक काम में स्वयं भगवान विठ्ठल उनकी सहायता करते थे। वे जनाबाई किस प्रकार श्री विठ्ठल एवं भक्तों के मध्य के नाते का परिचय करा देती है, अब हम इसे उन्हीं के अभंग अर्थात भक्ति गीत से समझेंगे। श्री विठ्ठल की लीलाओं का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय तथा उन्हें पुकारते समय संत जनाबाई को आंखों के सामने बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। श्री विठ्ठल को पुकारने वाले तथा उनके परम भक्त अर्थात उनके समकालीन संत भी उन्हें भगवान विठ्ठल के साथ दिखाई देते हैं। सभी संतों के प्राणाधार और सतत उनके साथ रहने वाले भगवान विठ्ठल प्रत्येक संत की गृहस्थी कितनी सहजता से चलाते हैं, ये विचार उनके मन में आता है। और ये विचार आते ही उन्हें गोपिकाओं के साथ खेलने वाले तथा लीला रचने वाले श्री कृष्ण का स्मरण होता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, चोखा, बंका जैसे सभी संत श्री कृष्ण के सखा एवं गोप है, और वे ही उन सभी पर किसी माँ समान ममता बरसा रहे हैं, उनका लाड़ दुलार कर रहे हैं और उनके योगक्षेम का निर्वहन कर रहे हैं। भगवान का गुणगान करते हुए संत जनाबाई उनके साथ रहने वाले विठ्ठल भक्तों एवं समकालीन संतों को वे भगवान विठ्ठल के बच्चे संबोधित करती है। भगवान एवं भक्त के नाते का वर्णन करते हुए जनाबाई तल्लीन होकर कहती है, विठू माझा लेकुर वाळा संगे गोपाळांचा मेळा, अर्थात भगवत भक्ति करने वाले भक्त मेरे विठ्ठल की संतान है। भगवान विठ्ठल कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है, तो कंधे पर माया रूपी प्रपंच का जो भार है, विश्व का व्याप है, जिसे वैरागी वृत्ति से देखना चाहिए, इसकी सीख देने वाले संत निवृत्ति नाथ को उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है। गृहस्थी माया है और भगवान ही सत्य है तथा उनकी भक्ति करना ही परम सत्य है, इसका जिसे ज्ञान है उन ज्ञानदेव जी को भगवान विठ्ठल ने सबसे आगे चलने के लिए कहा है। ज्ञान भक्ति की ये सीढ़ी चढ़े बिना मुक्ति नहीं मिलती, इसका बहान कराने वाले सोपान देव जी का हाथ भगवान विठ्ठल ने थाम रखा है, जबकि मुक्ताबाई उनके पीछे पीछे चल रही है। इसका अर्थ है निवृत्ति, ज्ञान, भक्ति की सीढ़ी तथा अंत में मुक्ति, इन चार सीढ़ियों को पार किए बिना भगवान से एकरूप होना संभव नहीं है। और ये चार चरण भगवान के अंग है। इन चार संतों के साथ विठ्ठल भक्ति करने वाले गोरा कुंभार, चोखा, जीवा, बंका एवं नामा जैसे अनेक संत भी हैं। इनमें से कोई भगवान की उंगली पकड़कर तो कोई उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चल रहे हैं, और इन सभी को भगवान विठ्ठल के साथ देखकर ऐसा लगता है कि अत्यधिक लाड़ दुलार के साथ मानो भगवान विठ्ठल ने उनका गुणगान समारोह ही आरंभ किया हो। संतों एवं भगवान विठ्ठल के सुंदर नाते के एक से एक सुंदर प्रमाण है। ये दिव्य नाता हम सभी की कल्पना शक्ति की क्षमता से परे है। संतों की भगवान के प्रति भक्ति समझने के लिए तथा भगवान के साथ उनके अटूट नाते को अनुभव करने के लिए हमें भी उच्च कोटि की भक्ति करनी होगी। उच्च कोटि की भक्ति के बाद ही संतों की भगवान के प्रति भक्ति हम समझ पाएंगे। भगवान और संतों में इस दृढ़ एवं अटूट नाते को अनुभव करते हुए हम सभी अपने अंतर में दृढ़ विट्ठल भक्ति अनुभव करने का प्रयास करेंगे। भगवान विट्ठल की अपने भक्तों के प्रति अपार प्रीति को अनुभव करेंगे तथा श्री विट्ठल भक्ति में रममण हो जाएंगे और उसमें निहित आनंद लेंगे। जब कोई जीव भूलोक पर जन्म लेता है तब वो अपने कंधों पर गृहस्थी और प्रारब्ध की गठरी लेकर आता है। उसे वैरागी वृत्ति से देखकर उसे चुकाना होगा। उसे अलिप्त रहकर भगवान से एकरूप होना है। अतः गृहस्थी की ओर साक्षी भाव से देखते हुए भगवान का नाम लेते हुए भगवत भक्ति की सीढ़ियां चढ़कर जीवन मुक्त होना चाहिए। इसका बोध ये सभी श्री विट्ठल भक्त संतगण हमें दे रहे हैं और ऐसा करने से ही भगवान और भक्त में जो अटूट नाता है उसे अनुभव करना संभव होगा। इसके लिए हम अति उत्तम भक्ति करेंगे। ये सब अनुभव करते समय श्री विट्ठल के रूप में गुरुदेव जी के ही दर्शन हुए, क्योंकि जैसे श्री पांडुरंग एवं भक्तों का नाता है उसी प्रकार से गुरुदेव जी का उनके भक्त रूपी साधकों से सुंदर नाता है। इसीलिए भगवान विट्ठल के उस प्रीतिमय रूप में गुरुदेव जी की ही छवि दिखाई देती है। हमारे श्री गुरुदेव जी का चैतन्यमय प्रभा मंडल ही इतना विशाल है कि उस प्रभा मंडल में विश्व के सभी साधक समा गए हैं। आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे भगवान विट्ठल साक्षात गुरुदेव जी के माध्यम से ही दर्शन दे रहे हैं। हमें किस प्रकार परम प्रिय गुरुदेव जी के भगवान विट्ठल के रूप में दर्शन हो रहे हैं, भगवान विट्ठल एवं गुरुदेव जी में कैसी समानता है, इसके संबंध में अब हम कुछ सूत्र समझ लेंगे तथा उसके द्वारा भगवान की दिव्य लीला को अनुभव करेंगे। कलयुग के भगवान के अवतारी रूप है श्री विट्ठल। वारकरी संप्रदाय के संतों से चली आ रही विट्ठल भक्ति की ये विरासत आज भी उतने ही भक्तिभाव से आगे बढ़ रही है। प्रत्येक वारकरी भगवान विट्ठल को बड़े लाड़ से मेरी विठू माऊली ऐसे बोलता है और प्रतिवर्ष भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पैदल वारी अर्थात पैदल तीर्थयात्रा करता है। पंढरपुर में आज भी भगवान विट्ठल की मूर्ति के चरण स्पर्श कर दर्शन किया जा सकता है। भगवान की ये कैसी अद्भुत भक्त वत्सलता। भक्तों के इस प्रेम के चलते भगवान भी भक्तों के बनकर रह जाते हैं और भक्त को भगवान से मिलने पर कोई बंधन नहीं है। भगवान पांडुरंग के भक्तों में सभी जाति के लोग थे। प्रत्येक जीव को भगवान पांडुरंग अपने ही लगते थे। सभी को समान भाव से देखने वाले भगवान विट्ठल की भांति ही गुरुदेव जी भी अखिल मानव जाति को समानता एवं समभाव की दृष्टि से देखते हैं। उनके पास आए किसी भी जीव के संबंध में जाति, धर्म, पंथ, स्त्री पुरुष अथवा निर्धन धनवान ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। ये साधक गुरुदेव जी द्वारा सिखाई गई साधना करते हुए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। श्री पांडुरंग एवं उनके भक्तों का जैसे नाता था तथा उनके भक्तों एवं संतगणों से नाता था, उसी प्रकार का अटूट नाता हम साधकों का गुरुदेव जी के साथ है। सभी साधकों को गुरुदेव जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथा गुरुदेव जी को भी सभी साधक अत्यंत प्रिय है। गुरुदेव जी प्रत्येक साधक का बहुत ध्यान रखते हैं और उन्हें संभालते हैं। भक्त प्रिय भगवान पांडुरंग भक्तों के भाव के भूखे होने से वे भक्त की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उसी प्रकार का निस्सीम प्रेम गुरुदेव जी प्रत्येक साधक पर करते हैं। और केवल साधकों पर ही नहीं अपितु समाज के प्रत्येक जीव एवं प्राणी मात्र पर वे निस्सीम प्रेम कर रहे हैं। समाज को साधना पथ पर मोड़ने के लिए प्रयासों की पराकाष्ठा करते हैं। भगवान पांडुरंग भक्तों के संकटों को अपने ऊपर ले लेते थे, उसी प्रकार गुरुदेव जी भी अपने भक्तों एवं साधकों की साधना में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए उनके दुख स्वयं पर लेते हैं। साधकों के उद्धार के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गुरुदेव जी इस युग के एकमेव द्वितीय व्यक्तित्व ही नहीं अपितु साक्षात भगवान पांडुरंग ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान पांडुरंग के प्रति आकर्षण के कारण देश के कोने कोने से उनके भक्त उनकी ओर दौड़े चले आते थे। अब उसी प्रकार से देश विदेशों के सहस्रों साधक गुरुदेव जी के प्रति भक्ति भाव के कारण साधना करने लगे हैं। केवल इस भूतल पर ही नहीं अपितु उच्च लोकों के सहस्रों जीव भी बाल साधकों के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। उच्च स्वर्गलोक महरलोक जैसे उच्च लोकों से आए ये बाल साधक गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। इन बाल साधकों में मेरुमणि 71% आध्यात्मिक स्तर प्राप्त तथा जनलोक से पृथ्वी पर जन्मे बालक पूज्य भार्गवराम प्रभु जी एवं पूज्य वामन राजनदेकर जी जन्म से ही संत पद प्राप्त कर चुके हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त गुरुदेव जी साधना द्वारा साधकों एवं अखिल मनुष्य जाति का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। कलियुग की रजतमयुक्त वृत्ति का अर्थात स्वभाव दोष एवं अहम रूपी षड रिपुओं को नष्ट करने के लिए वे विविध पद्धतियों से चैतन्य में वृद्धि कर रहे हैं। वर्तमान में रजतमो के अधिकतम प्रभाव के कारण अत्यंत विकट एवं भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सर्वत्र चैतन्य का प्रभाव बढ़ाना यही एकमात्र उपाय है। इसके लिए गुरुदेव जी विभिन्न प्रकार से सर्वत्र चैतन्य की वृद्धि कर रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी के मंगल दिन पर दयानिधि भगवान पांडुरंग की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। इसके लिए हम सभी दयानिधि भगवान पांडुरंग के सुकोमल श्री चरणों में कोटि 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 कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।